कुछ दिन पहले एक खबर पेपर में आई और ये इस तरह से है कि दैनिक जागरण में 29 अक्टूबर को ही निकला था और इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, लिखा है पहली बार खोली गई ईसा मसीह की कब्र। तो ये एक बहुत अच्छी पूरी घटना इसमें आई कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की कब्र को खोला गया और उसमें क्या क्या चीजें पाई गई। और उन्होंने उस कब्र में उस चीज को देखा कि जो जब प्रभु यीशु मसीह की लोथ वहां रखी गई थी तो क्या चिन्ह उस पर पड़े थे और उस पर अभी भी बहुत खोज हो रही है। और जब मैं पढ़ रहा था तो मैं देखने लगा, मैं सोचने लगा कि पेपर में अगर लोग ध्यान दें तो यीशु मसीह की सच्चाई का वर्णन किया जा रहा है, एक वास्तविकता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म वास्तविकता है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और मृत्यु वास्तविकता है और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना वास्तविकता है, इसीलिए कब्र आज भी खाली है। और ये उन शोधकर्ताओं के द्वारा ये दिया गया है, ज्यादा पुराना नहीं है। और इसीलिए मैंने सोचा कि अच्छा है मैं आपके सामने इसको रखूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं समय को ध्यान रखते हुए, लेकिन इसमें वो विस्तृत जानकारी है किस प्रकार से शोधकर्ताओं ने इस बात को देखा है यीशु मसीह की कब्र के बारे में। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, उसके जन्म के बारे में बात करते हैं, शायद इस भारत देश में हम बहुत थोड़ी संख्या में हैं, अल्पसंख्या हैं, और इसलिए शायद उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और हम वो ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। और ये जो बड़ा दिन है कि पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के रीति से मनाया जाता है, मैं अक्सर बोलता हूं इस बात को, क्यों बड़ा दिन इसको कहा गया। बड़ा दिन इसलिए नहीं कि इस दिन बड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ा दिन इसलिए क्योंकि संसार में एक बहुत बड़ा काम हो गया, एक बहुत बड़ा काम हो गया। और वो काम यह है कि वो अद्भुत परमेश्वर जिसने संसार की सृष्टि की, जो संसार का सृष्टि करता है, वो मेरे और आपके लिए, मानव जाति के लिए, मानव प्राणी के लिए सृष्टि करता, सृष्टि बनकर इस पृथ्वी में आ गया। ये बड़ा काम, इसलिए इसका बड़ा दिन नाम रखा। फिर से दोहरा रहा हूं, इसलिए बड़ा दिन क्योंकि आज के दिन, आज से लगभग 2016 साल पूर्व, ऐतिहासिक घटना है। ये ऐतिहासिक घटना है, ये विशिष्ट घटना है और ये ऐसी घटना है जिसके सामने हर एक व्यक्ति सर झुकाता है। संसार में बहुत सारे लोग हम यीशु को नहीं मानते, लेकिन बिना उसके सामने सिर झुकाए उनका जीवन व्यतीत नहीं होता। अगर आज संसार में अगर इतिहास विभाजित है तो ईसा पूर्व और ईसवी के ऊपर है, बिफोर क्राइस्ट एडी। इस प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरा संसार का इतिहास निर्भर है। इसका मतलब क्या है, हम कहें हम नहीं मानते, लेकिन जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम इस तिथि को डालते हैं, इनडायरेक्टली हम अपने सरों को उस तिथि के सामने झुका रहे हैं, हम कह रहे हैं यीशु मसीह इस संसार में आया है। यह वास्तविकता है, यह वास्तविकता है। और इसलिए हमें जानना है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह एक नई खोज करके कोई नई शिक्षा देने के लिए नहीं आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य परमेश्वर की सनातन योजना के कारण था। अभी जो स्थल भाई ने पढ़ा और उनको पढ़ते हुए उन्होंने एक बात, कुछ बातों को कहा, उसी स्थल से मैं आपके सामने आज कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं ताकि हम वचन को समझ सकें। लिखा हुआ है, उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। अरे, एक बड़ा तेज, अद्भुत, चौंका देने वाला, ये कैसे ही उजाला है। वो रात में गरड़िए, साधारण लोग गरड़िए अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं और एकदम से उनके सामने एक बहुत बड़ा तेज चमकता है। वो चौंक जाते हैं, ये कैसा तेज है, वो डर जाते हैं
और जब भयभीत होते हैं एक आवाज उनके कानों में पहुंचती है, और वो आवाज किसकी है? वो स्वर्गदूत की है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को लेकर उन साधारण लोगों के बीच में आ गया है। और क्या आवाज है? वो कहता है सबसे पहली बात, स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनुष्य के जीवन से भय दूर करके आनंद को लेने देने के लिए संसार में हुआ। फिर से दोहरा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में मानव जी के अंदर, मानव जीवन में जो भय जिसने उसको जकड़ लिया था उसको दूर कर करके वो एक आनंद का संदेश लेकर वो आ गया। कौन सा भय? क्यों भय? भय, आप जानते हैं कहां से आरंभ हो गया भय? परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, और जब परमेश्वर संसार की सृष्टि की, ये बाइबल में पूरा बहुत ही सुंदर रीति से इसका विवरण है। और बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति की पहली पुस्तक है जिसमें संसार की सृष्टि का सारा वर्णन है, और किस प्रकार से इन 6 दिनों में परमेश्वर ने संसार को, सब कुछ को बनाया। परमेश्वर ने कहा और उस शब्द के कहने के द्वारा आकाश और पृथ्वी बन गई, और एक के बाद दूसरे दिन, दूसरे के बाद तीसरे दिन, और फिर उसने 6 दिन में मनुष्य की सृष्टि की। और जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने क्या किया? उसने एक मिट्टी के पुतले को बनाया। ध्यान दीजिए, संसार में कुछ नहीं से कुछ नहीं नहीं बनाया था। फिर से बोल रहा हूं, संसार में कुछ नहीं से कुछ नहीं बनता, कुछ को बनाने के लिए कुछ की जरूरत पड़ती है। फिर से दोहरा रहा हूं, संसार में कुछ नहीं से कुछ नहीं बनता, कुछ को बनाने के लिए कुछ की जरूरत पड़ती है, लेकिन एकमात्र परमेश्वर है जो कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। ये विशेषता परमेश्वर की, एकमात्र परमेश्वर कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है, और यही परमेश्वर ने किया। मनुष्य कुछ नहीं से कुछ नहीं बना सकता, यही परमेश्वर और मनुष्य में अलग है, भेद की बात है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं है, परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं है, परमेश्वर स्वयं है, और परमेश्वर ने स्वयं इस संसार की सृष्टि की है। तो जैसे मैंने कहा, बाइबल बताती है, लेकिन 6 दिन उसने मिट्टी के पुतले को लिया, और पुतले को लेकर उसने उसमें अपना श्वास डाला, अपना आत्मा उसमें दिया, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में सृजा। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं, वो ज्योति परमेश्वर है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है। अंधकार पाप को प्रदर्शित करता है, ज्योति प्रकाश जो है पवित्रता को प्रकट करती है। परमेश्वर पवित्र है, दूसरी परमेश्वर प्रेमी है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है इसलिए हम उसके प्रेम को इस रीति समझ सकते हैं कि प्रेम करने के कारण वो स्वयं मनुष्य बनकर मेरे और आप तक पहुंच गया। उसके प्रेम ने मेरे को और आप तक उसको पहुंचा दिया। अभी मैं आगे और जाके स्पष्ट करूंगा। लेकिन तीसरी बात, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर के स्वरूप में वो बना था। क्या मतलब है? मनुष्य के जैसे परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य में पवित्रता वास करती थी, जैसे परमेश्वर प्रेमी है, मनुष्य के अंदर प्रेम वास करता था, ये परमेश्वर के गुण उसमें वास करते थे, परमेश्वर का स्वभाव उसमें वास करता था, परमेश्वर का चरित्र उसमें वास करता था। लेकिन कुछ हम बातें आगे चलकर कुछ गड़बड़ हुआ, और उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल इस बात को स्पष्ट बताती है, बाइबल सिखाती है कि मनुष्य के अंदर पाप उत्पन्न हो गया अदन की वाटिका में, और उस पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। थोड़ी सी लंबी कहानी है और मैं इस समय स्पष्ट नहीं करता, लेकिन संक्षिप में मनुष्य के अंदर पाप उत्पन्न हुआ और पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, और अलग होने के कारण अब मनुष्य के अंदर अपवित्रता आ गई, अब मनुष्य के अंदर भय उत्पन्न हो गया। और जब प्रतिदिन शाम को परमेश्वर मनुष्य के पास आता था, मिलता था, बात करते थे, परमेश्वर आनंदित था, मनुष्य आनंदित था, लेकिन पाप के कारण बाइबल बताती है मनुष्य ने अपने आप को छिपा लिया, क्योंकि अब वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता था। परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तू कहां है? उसका जवाब था, मैंने अपने आप को हे परमेश्वर पिता तुझसे छिपा लिया, तुझसे छिपा लिया। परमेश्वर ने कहा क्यों? तब उसका है, मैंने तो तूने मुझे कहा था वो मैंने नहीं किया, इसलिए मैं डर गया, इसलिए मैं डर गया। और अदन की वाटिका में पाप ने मनुष्य के अंदर भय और डर उत्पन्न कर दिया, और इस डर के कारण आज हम संसार में मनुष्य की स्थिति को देखते हैं, पाप के कारण संसार की स्थिति को देखते हैं। धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है, धार्मिक क्रियाकलापों की कमी नहीं है, रोज दिन पर दिन चर्च मस्जिद गुरुद्वारे और मंदिर ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ साल पहले इस क्षेत्र में चर्च नहीं थे, अब चर्च भी बढ़ गए, बढ़ते चले जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है, धार्मिक रीति विधियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य पाप में है। वास्तव का क्या है? पाप बाहर में नहीं है, लेकिन पाप मनुष्य के अंदर है, ये अंदर है। और मनुष्य पाप ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया, उसकी सोच भ्रष्ट हो गई, उसकी क्रियाएं भ्रष्ट हो गई, उसका मन भ्रष्ट हो गया, और मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, क्योंकि पाप और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। और यहां पर कहता है कि डरो मत। क्या मतलब है? वो डर जो तुम्हारे जीवन पाप के कारण था। मनुष्य आज अंधकार में या कोई काम करता, गलत काम करता, वो डरता है, पकड़ ना ले जाए, देख ना ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। चाहे कितना भी दिलेर होगा, वो किसी को मारेगा, मार के भागेगा। क्यों? बहुत दिलेर है, मार दिया, भागेगा। क्यों? कहीं ना कहीं डर है, पकड़ ना ले जाए। भय मनुष्य के अंदर वास करता है, वास करता है, और यह मनुष्य को पाप में जकड़ता 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 ला चला है। तो मैंने कहा मनुष्य कि पाप की बीमारी मनुष्य के बाहर नहीं है, मनुष्य के अंदर है, अंदर है, अंदर है। मनुष्य पाप करने के कारण पापी नहीं होता, लेकिन चूंकि वो पापी है इसलिए वो पाप करता है। मनुष्य पाप करने के कारण पापी नहीं होता, लेकिन चूंकि पापी है इसलिए वो पाप करता है, और उसका जीवन इसी चलता है। मैं अपने जीवन के अनुभव से जानता हूं, सो हमें उसको समझना है। पर जब प्रभु यीशु मसीह का वचन यहां पर लिखा है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूं, ये किसके लिए है? केवल कुछ समूह के लिए, केवल कुछ लोगों के लिए जहां प्रभु यीशु मसीह जन्मे थे वहां के लोगों के लिए, या कुछ? नहीं 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 नहीं, लिखा हुआ है जो सब लोगों के लिए होगा, संसार के सब लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर संसार के सब लोगों से प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से, संसार से, मुझसे और आपसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि यह परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है। यह प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन है। और बड़ा दिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का सबसे बड़ा संदेश है। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह संसार में ना आते ये बड़ा दिन न मनता, ये बड़ा दिन न मनता। और इसलिए वो आगे कहता है सब लोगों के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी कुल का हो, किसी भाषा का हो, देशी और विदेशी हो, भारत का और विदेश का हो, कहीं का भी हो, कोला काला हो, गोरा हो, धनी हो, निर्धन हो, सबके लिए, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। वो किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं, किसी विशेष समूह के लिए नहीं, किसी विशेष समाज के लिए नहीं, किसी विशेष जाति के लिए नहीं, वो मानव जाति के लिए। परमेश्वर की दृष्टि में केवल दो प्रकार के लोग हैं और कोई नहीं, एक वो जिन्होंने उस परमेश्वर को जान लिया है, एक वो जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना है और कोई नहीं। उसके अंदर उसके उसमें कोई जाति का विभाजन नहीं, कोई ऊंच नीच का विभाजन नहीं, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का उस मनुष्य जाति से प्रेम करता है। वो क्या कह रहा है, क्या सब लोग, कौन सा संदेश है, कौन सा संदेश, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो क्या है, उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता, ये बड़ा दिन का संदेश है। क्यों उद्धारकर्ता, मनुष्य ने पाप किया था, पाप के बंधन में आ गया था, अब अपने प्रयास के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा उस चीज को प्राप्त करना चाह रहा था, परमेश्वर से अलग हो गया था, अब वो परमेश्वर तक पहुंचना चाह रहा था। मोक्ष क्या है, उद्धार क्या है, पाप के कारण जो मानव प्राणी परमेश्वर से अलग हो गया, उस पाप से छुटकारा पाकर पुनः परमेश्वर के साथ मिल जाना, यही मोक्ष और यही उद्धार है। और इसी को करने के लिए प्रभु संसार में आए, कोई रीति विधियां नहीं, कोई और तरीके नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए। तो कह रहा वो उद्धार करता जन्मा है। अरे ये बालक राजमहल में नहीं आया, बहुत कहीं और बड़ी जगह में नहीं आया, साधारण जगह में, चरनी में उसने जन्म लिया, गौशाला में जब उसका जन्म हुआ था उसके जन्म के लिए जगह भी नहीं थी, और एक साधारण रीति से जन्म लिया। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का न केवल प्रेम था, लेकिन ये परमेश्वर की सबसे बड़ी दीनता थी। न केवल परमेश्वर का प्रेम था, लेकिन परमेश्वर की सबसे बड़ी दीनता थी कि उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को मेरे और आपसे कम कर दिया। यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनका जन्म चरनी में हुआ, नहीं, किसी ना किसी से हमें स्थान मिल गया। लेकिन मेरे प्रियो, वो क्यों, वो परमेश्वर असीमित परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता, वो इतना झुक गया, इतना दीन हो गया कि उसने वो जगह चुन ली ताकि एक साधारण व्यक्ति, एक छोटा सा छोटा व्यक्ति उसको जान सके, उसको पहचान सके। अगर राजमहल में जगन जन्म लेता तो हर जन उस राजमहल में नहीं जा सकते थे, ऐसे छोटे स्थान में। क्यों, क्योंकि वो मुझसे और आपसे, मानव प्राणी से प्रेम करता था। क्यों, क्योंकि एक दिन उसने अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया था। जिस दिन पाप मनुष्य के आ गया, उसके हृदय में वेदना आ गई, पीड़ा आ गई, दुख आ गया। मैंने तो इसके अपने हाथ से इसको सृजा था, इसकी सृष्टि की थी ताकि मेरे साथ सहभागिता करेगा, लेकिन ये पाप के कारण दुख हो गया, दूर हो गया, और उस पीड़ा को लेकर उसने मेरे और आपसे इतना अधिक प्रेम किया कि वो मनुष्य देह धारण कर गया। वो उद्धार करता क्यों, ताकि क्या लिखा हुआ है, उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह है। क्या मतलब है मसीह, ना केवल वो इस पृथ्वी पर इसलिए जन्म लिया कि कुछ देर वो शिक्षाओं को दे दे, कुछ और आश्चर्य कम कर दे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी थे, उन्होंने 30 साल रहकर, उन्होंने अपने पिता माता साथ अधीनता में रहे, 3-3.5 साल रह के जो सेवा करी, अंधों को आंखें दी, बीमारों को चंगाई दिए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत कुछ किया, मुर्दों को जलाया, केवल इतना नहीं, लेकिन सबसे बढ़कर पाप की छुड़ौती के लिए इस संसार में कोई ऐसा साधन नहीं था जो मनुष्य को पाप से छुटकारा मिल सके। उसके धर्म कर्म उसको छुटकारा नहीं दे सकते थे। एक कैदी को छुड़ाने के लिए दूसरा कैदी उसको नहीं छुड़ा सकता। एक कैदी को छुड़ाने के लिए आजाद व्यक्ति की जरूरत है। मेरे प्रियो, एक पापी को छुड़ाने के लिए पापी दूसरे पापी का छुटकारा नहीं कर सकता। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो स्वयं पापी ना हो, निष्पाप हो, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पूर्णतः शुद्ध हो। और प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा जिसको नाम दिया गया, वो इसीलिए मेरे और आपके पापों की कीमत उसने चुका दी। क्यों हम इतवार को आराधना करते हैं, हर इतवार को मसीह लोग क्यों गिरजे घर में आराधना करते हैं, उसका एक कारण है। कारण यह है प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ना केवल है, लेकिन वो पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे, कब्र खाली है। आपने भी न्यूज सुन ली, कब्र खाली है। इतने साल बाद भी शोध इस बात की साक्षी दे रही है, तीसरे दिन जी उठे। और इसी जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपना दर्शन दिया और कहा, देखो मैंने तुमने मेरे को क्रूस पर चढ़ाया था, मैं तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, लेकिन मृत्यु मुझसे बड़ी नहीं है, मृत्यु मुझ पर हावी नहीं हो सकी, जी उठ करके मैंने मृत्यु पाई है, और इसलिए वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया। और इसी बलिदान को स्मरण करते हुए, तीसरे दिन उसकी मृत्यु में से जी उठने को स्मरण करते हुए, हम हर इतवार को उसकी आराधना करते हैं, हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं वो जी उठा है। कल हम यहां तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे आ गए यहां पर पास में स्कूल में, वो टीचर्स हैं, तीन बेटियां आ गई, हम मैं था मैं से बात करने लगी, तो अंदर आई, मैं भी उनके साथ आया, तो चारों तरफ कुछ कुछ देख रहे थे। मैं समझ गया कि उनके मन के विचार क्या चल रहे हैं, उनके मन के विचार क्या चल रहे हैं। कहने लगे, मैंने क्या सोच रही हैं बेटा, कहने लगे अंकल यहां पर कुछ दिखाई नहीं रहा। मैंने क्या, मैं समझ गया। कहने लगे जीसस कहां है, जीसस कहां है। मैंने बेटा जो तुम सोच रहे हो मैं समझ रहा हूं। तब मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, मैंने ये बताइए कि जब एक व्यक्ति जीवित रहता है तो क्या उसकी मूर्ति बनाकर या उसकी तस्वीर बनाकर उसको मालार्पण किया जाता है। नहीं, हमने कहा हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा, ना केवल उसने जन्म लिया। अगर उसने केवल जन्म लिया होता और क्रूस पर मेरे और आपके पापों को लेकर वो क्रूस पर बलिदान ना होता, मारा ना गया होता और गाड़ा गया ना होता, तीसरे दिन जीव ना उठा, कब्र पर उसकी कहानी खत्म हो जाती, मैं और आप यहां ना रहते। लेकिन चूंकि वो तीसरे दिन जी उठा, तब उसके शिष्य ने कहा देखो वो जी उठा है, और तब उसने सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया, और तब कलीसियाओं की स्थापना हुई और लोग विश्वास करके उसके पीछे चलने लगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उठा है। सो बड़े दिन का संदेश, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में पाप के लिए बलिदान होने के लिए आया। आगे चल के एक और बात कहता है, वो कह रहा है आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में शांति हो जिनसे वो प्रसन्न है। फिर से पढ़ रहा हूं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में मनुष्य में शांति हो। क्या सब मनुष्य में शांति नहीं, शांति सबके लिए नहीं है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है जिनसे वो प्रसन्न है। जब तक मैं और आप पाप के जीवन में हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें अपने पाप से उसके सामने आके पश्चाताप करना है। घर में माता पिता क्या करते हैं, एक बेटा है बेटी है, पापा ने कहा बेटा तुम्हें ये नहीं करना है। अगर बेटा नहीं मानता है तो माँ बाप के हृदय को दुख होता है, माँ बाप उससे प्रश्न होते हैं। लेकिन बेटा जाता है, बेटी जाती है, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, पापा मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, ठीक है माफ करेंगे, दोबारा ये काम मत करना, नहीं अब हम नहीं करेंगे। और तब उसके अधीन माता पिता की अधीनता में थे, माता पिता उससे खुश हो जाते हैं, प्रश्न उसको गले लगाते हैं। वो प्रश्न का कारण होता है, क्यों प्रसन्नता का कारण हो गया माता पिता के, क्योंकि उस बालक ने उस बच्चे ने अपनी गलती को माना है, अपने पाप को माना है, अपने अपराध को माना है, और माता पिता के पास जाके क्षमा मांगी है, माता पिता ने उसको क्षमा किया है, गले लगाया। अब उसने कहा अब मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा। लेकिन अगर पाप करने बाद अपराध मांगने बाद फिर वही करे, अपराध मांगने बाद फिर वही करे, तब क्या होगा, एक चाटा, तेरी तो आदत खराब है, तेरी तो आदत बिगड़ी है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर परमेश्वर हमें प्यार करता है, और वो कहता है अगर तुमने पाप किया है, तुम पाप के कारण नाश हो रहे। बाइबल कहती है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी से मृत्यु है, मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु नहीं, यह मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मेरे और आपके अंदर जो जीवन है, प्राण है, वो अनंत काल की आग में चला जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन अगर उस प्रभु यीशु मसीह पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे, उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, तो वो आपसे प्रसन्न होगा और आपके हृदय में सच्ची शांति उत्पन्न करेगा। परमेश्वर के वचन में कई जगह शांति के बारे में, वो शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, वो शांति जो पूर्ण शांति है, वो शांति जो गहरी नदी के समान है। आप नदी को देखते हैं और नदी के सामने खड़े हो जाइए और एक पत्थर ले लीजिए और पत्थर लेके नदी में फेंक दीजिए, आपको ऊपर बहरे बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अंदर सतह में क्या रहता है, नदी वैसी बहती रहती है वैसी। ये परमेश्वर की शांति है, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, धन दौलत नहीं दे सकती, मान और सम्मान नहीं सकता, कोई और चीज नहीं दे सकती, वो परमेश्वर शांति देता है। कब? जब एक मनुष्य अपने पाप को मान ले। बाइबल में एक बहुत सुंदर वर्णन है, एक बेटा था, एक पिता था, उसके दो बेटे थे, और उसने छोटा बेटा आया पिता से कहता है पिताजी पिताजी मेरी संपत्ति मुझे दे दीजिए और मैं लेके जाऊंगा, अपने मित्रों साथ रहूंगा। पिता ने बहुत समझाया कि नहीं बेटा, तुझे सब कुछ दिया हुआ, तू क्यों ऐसा कर रहा है? नहीं पिताजी, वो संपत्ति मुझे दे दीजिए, मेरी संपत्ति दे। पिता ने नौकरों को आदेश दिया और उसे कहा कि ये ले, और उनको नौकरों ने कहा ठीक है ये बेटे को दे दो। बेटे ने संपत्ति ली, लेके चला गया अपने मित्रों के साथ, कुछ दिन उड़ाया, कुछ दिन मौज मस्ती मारी, खूब खुश था। धीरे धीरे संपत्ति खत्म होने लगी। जब धन खत्म होने लगा, धीरे धीरे उसके मित्र उसको छोड़कर जाने लगे, और तब परेशान होने लगा। अब खाने के लिए परेशान है, रात में नींद नहीं आ रही है, व्याकुल है। तब परमेश्वर के वचन में लिखा है तब एक दिन वो अपने होश में आया, तब एक दिन वो अपने होश में आया, अपने आपे में आया, मैंने अपने पिता की दृष्टि में एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरा पिता मुझे बार बार समझाता था, मैं उसके साथ अच्छी रीति से रहता था, मेरे से अच्छे तो वो नौकर हैं जो मेरे घर में मेरे पिता के पास रहते हैं। और तब वो उठा, कहना मैं उठकर जाऊंगा, अपने पिता से माफी मांगूंगा और पिता से कहूंगा पिताजी मैंने आपकी दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में अपराध किया है, पाप किया है, गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बेटा आया, पिता रोज देखता था, शायद आज मेरा बेटा वापस आएगा, शायद आज मेरा बेटा वापस आएगा, शायद आज मेरा बेटा वापस आएगा, क्योंकि वो अपने उस बेटे से प्यार करता था। पर एक दिन उसका बेटा वापस आया, पिता देखता है बेटा चला रहा है, बेटे ने सोचा शायद ये पिता मुझे देखकर क्रोधित होगा, कुछ और होगा। लेकिन जैसे बेटा पास आया, बेटे के आंसू निकल रहे हैं, पिता ने उसको गले लगाया। बेटा कहता है पिताजी पिताजी मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मैंने आपकी दृष्टि में अपराध किया है, मैं परमेश्वर की दृष्टि में मैंने अपराध किया है, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। उसने उसे गले से लगाया, नौकर से कहा मेरा बेटा जो खो गया था वो लौट आया है, ओ उसको देखो, उसको नहलाओ, उसको वस्त्र बनाओ, उसको नया जूते बनाओ, नई अंगीठी अंगूठी बनाओ, मेहमानों को बुलाओ ताकि हम आनंद मनाएं, बेटा मेरा बेटा खो गया था आज आ गया है। मेरे प्रियो, मनुष्य की दशा यही दशा है, पाप के कारण मनुष्य अपनी सृष्टिकर्ता से खो गया है, अलग हो गया है, उससे अपने अपने मार लिए हैं, वो भटक गया है। लेकिन आज भी परमेश्वर जिसने मेरे और आपसे पहले होकर प्रेम किया और अपने आप को मनुष्य दे धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया, उसने जन्म लिया, ना कल जन्म लिया, लेकिन मेरे और आपके पाप के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और उसके हाथों में कील छिदे हुए, वो कहता है हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब पाप से दबे लोगों, बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
ये बड़े दिन का संदेश है, प्रभु ने इसलिए जन्म दिया कि वो आपको अपने पास बुलाए, अपने सीने से लगाए, आपके अपराधों को क्षमा करे, आपको अपने संतान बनाए, एक नया जीवन दे, वो जीवन जो आनंद से भरा हुआ जीवन है, वो जीवन जो शांति से भरा हुआ जीवन है। और मेरे प्रियो आगे वचन में क्या लिखा है, जब उन्होंने सुना तो लिखा है आपस में कहने लगे आओ जाकर हम देखें, आओ परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। संसार में आज सबसे अधिक संख्या में इस पुस्तक को पढ़ने वाले लोग हैं, संसार में सबसे अधिक भाषाओं में यह अनुवादित है, सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित है। प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से मुझे बहुत भारत में कई जगह लोगों से मिलने का मौका मिलता रहता है, मैं बात करता हूं और मैं कई लोग, ये बाइबल लोगों के सबसे अधिक लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रही है, धर्म परिवर्तित नहीं कर रही है, जीवन परिवर्तित, मेरे जीवन को बदला। मैं आज से करीब 40 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया। एचएल में नौकरी करते समय मुझे मालूम था मेरी दशा क्या थी, लेकिन जब मैंने वचन को पाया, प्रभु ने मुझे दिखाया मैं पापी और पाप में नाश हो रहा हूं, मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, मैंने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने मेरे जीवन को बदला, मेरे मार्ग को बदला, मेरी दशा को बदला, मेरे जीवन में आनंद दिया, शांति दिया, उस शांति का आज मैं प्रचार करता हूं। ओ लोगों, यीशु को देखो, यीशु को आओ देखो, वो शांति का राजकुमार इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर आ गया, देखो और उससे उस शांति को प्राप्त करो। मेरे प्रियो, जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है? क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है? बाइबल उत्तर देती है, हां है, मृत्यु के बाद वो जीवन है जो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने का जीवन है। संसार का धन संपत्ति, ये रोटी कपड़ा मकान जरूरत तो है, लेकिन ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है। मेरे प्रियो, जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया, एक प्रभु के सेवक ने मुझसे पूछा था, भाई रॉली अगर आज आप मर जाएं आप कहां जाएंगे, क्या आपका निश्चय? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम अगर आज मेरा हार्ट अटैक हो जाए, अभी मैं बात कर रहा हूं, ठोकर खाऊं, हार्ट अटैक का चलाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूं उस आशा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे धर्म कर्म के कारण नहीं, मेरे अच्छे गुणों के कारण नहीं, मेरे और किसी कारण नहीं, लेकिन उसकी प्रेम और उसकी दया के कारण, जिस प्रेम में होकर उसने अपने आप को दे दिया, दया में होकर उसने बालक का रूप ले लिया, इस संसार में आ गया और मेरे लिए क्रूस पर उसने आपको बलिदान कर दिया, उसके कारण मेरे पाप से क्षमा हुए, उस पर विश्वास करने। यदि आप भी उस पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको भी वो जीवन प्रदान करेगा। कहता है उन मनुष्य के बीच में जिनसे वो प्रश्न है, परमेश्वर काश मेरे आपकी सहायता करे। बड़े एक दिन का संदेश ये संदेश है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि वो मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बांध कर दे, मारे जाएं, गाड़े जाएं और तीसरे दिन जुटे। और जब वो आकाश में उठाया जा रहा था, उसने एक धन्य आशा दी कि देखो मैं जैसे जाता हूं फिर से वापस आऊंगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, ताकि तुम अनंत काल तक मेरे साथ रहो। मेरे और आपके लिए एक धन्य आशा है। संसार में शारीरिक रीति से मरेंगे, लेकिन आत्मिक रीति से हम उसके साथ अनंत काल तक जिएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह में धन्य आशा है, संसार में कोई कहीं नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं, बाइबल धर्म के बारे में कुछ बात नहीं कहती। बाइबल कहती है हमारे धर्म के कार्य परमेश्वर की दृष्टि में सब फटे हुए मैले चित्र के समान है, फटे हुए मैले। अगर मेरे हाथ में कोड़ हो और मैं आपको बहुत महंगी मिठाई, जो राम आश्रय की बहुत महंगी मिठाई मांगती, लाकर मैं आपको दूं, आप क्या मिठाई खाएंगे? आपकी दृष्टि कहां पर जाएगी? मेरे कोड़ पे जाएगी, मेरे हाथों पे जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे हाथ शुद्ध हैं और एक छोटी सी टॉफी मैं आपके सामने रखूं, आपको लेते समय कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हम कितनी बार पाप के कोड़ से लतपत होकर कुछ चीजों को लेकर जाते हैं, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, तू ले ले। लेकिन प्रभु कहता है पहले तू अपने कोड़ का इलाज कर, पहले तू अपने कोड़ का इलाज कर। और कोड़ का इलाज केवल यीशु के लहू के द्वारा है, उसके लहू के द्वारा है, उस पर विश्वास करने द्वारा, पापों की क्षमा के द्वारा। काश प्रभु आपका आशीष दे। हमारा बड़े दिन की शुभकामना आपके लिए यही है कि आप उस यीशु को जाने जिस यीशु ने आपके लिए संसार में यहां पर आया। हम बहुत सारी नाच गाना ये सारा चीज नहीं करते,
लोग जैसे आश करते हैं, लेकिन हम उस वचन को देना चाहते हैं जो वचन लोगों के जीवन के लिए जरूरत है। वो सारी चीज थोड़ी दिखी है फिर चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत काल का वचन है। जो उसको खाएगा, जो उसमें से लेगा, वो अनंत काल के लिए जीवेगा।